Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazang mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. और हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
आप दोनों को नमस्कार.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया.
द हेडलाइंस फॉर दिस इवनिंग आर एज फॉलोज. इंडियन इक्विटीज बाउंस बैक आफ्टर स्लाइडिंग फॉर फोर स्ट्रेट सेशंस. Sensex closes at 82,571. निफ्टी सेटल्स नियर 25,200. In international markets, most Asian indices today and US stocks overnight end with gains, and India's overall exports rise by nearly 6% in the first quarter of current financial year. Electronic goods exports increase almost 47% in June.
घरेलू शेयर बाजार में पिछले चार सत्रों में हुई गिरावट के बाद आज लौटी रौनक. बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक. सेंसेक्स 82,571 पर हुआ बंद. निफ्टी 25,200 के नजदीक दर्ज हुआ. कल अमेरिका में हुई लिवाली के बाद आज एशिया के प्रमुख बाजार लाभ के साथ बंद हुए. और देश में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल निर्यात लगभग 6% बढ़ा, जबकि जून में इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में हुई शानदार लगभग 47% की वृद्धि. घरेलू शेयर बाजार में पिछले चार सत्रों से चल रही बिकवाली आज थम गई और निवेशकों की अच्छी खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए. देश में जून महीने में खुदरा मुद्रा स्फीति में हुई गिरावट का असर आज निवेशकों पर देखने को मिला. साथ ही एशियाई बाजारों में अच्छी खासी लिवाली और बीते कारोबारी सत्र में कल अमरीकी शेयर बाजार से मिले सकारात्मक रुझान पर निवेशकों का विश्वास आज बाजार में खुलकर दिखा और बाजार की रौनक फिर से लौटती नजर आई. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 317 अंक यानी 0.39% की बढ़त लेकर 82,571 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 114 अंक यानी 0.45% तेजी के साथ 25,196 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.83% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.95% ऊपर आकर बंद हुआ.
Indian equities bounced back today and settled with gains after four straight sessions of losses. Markets were buoyed by easing retail inflation in June 2025 and positive global cues coming from US markets overnight and Asian markets today. The 30 share index at Sensex settled at 82,571, adding 317 points or 0.39%, while the Nifty 50 ended the day at 25,196, climbing 114 points or 0.45%. Broader market indices also ended the day in positive territory with nearly 1% rise. The mid-cap index rose 0.83%, while the small-cap index closed 0.95% higher.
नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 22 कंपनियों के शेयर आज लाभ में रहे. लाभ उठाने वालों में सबसे आगे रही कंपनी सन फार्मा, जिसके शेयरों में 2.71% की वृद्धि हमने देखी. बजाज फाइनेंशियल के शेयर 1.69% ऊपर आ गए. टाटा मोटर्स को 1.55% का मुनाफा हुआ. उधर घाटा उठाने वालों में प्रमुख रही कंपनी एचसीएल, जिसके शेयर 3.31% लुढ़क गए. एटर्नल के शेयरों में 1.57% की कमी आई. टाटा स्टील के शेयर 0.81% घाटे में रहे।
In sectoral indices at the BSE, barring utilities, all other sectors ended on a positive note. Auto sector rose 1.48%, healthcare added 1.14% and consumer discretionary advanced 0.89%. Utility sector slipped 0.15%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,576 companies advanced. Shares of 1,479 companies declined, while shares of 160 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 85 companies hit their 52-week high, while 21 hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज एक डॉलर की तुलना में रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ, 85.81 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 98.04 पर चल रहा था।
I think now's the time to bring in our expert here. Let's first talk about easing retail inflation. So, retail inflation as it is at a six-year low right now. I think that revives hopes of a rate cut again, is it?
See, Niharika, as you said, this year, as far as the inflation trajectory is concerned, yes, we are almost at almost six-year low as far as CPI inflation is concerned. And it could also be the below the estimate of RBI, which is around 3.6% for the entire financial year. So, so which obviously is a very big positive for policymakers, especially the central bank. And that is the reason today RBI Governor Sanjay Malhotra has already said that if inflation trajectory stays at the current levels and the data that is incoming, if required, they may look at a further cut in rates. Also, another positive thing which he has said that the consumer survey done by the Reserve Bank, by the Central Bank, also is giving them a hope of a growth uptick. So, and may also look at revising growth projections for the current financial year. So, yes, you are right. If inflation, as the inflation trajectory is downwards, obviously it gives RBI a cushion to further cut rates. They've already cut by almost 100 basis points in the current financial year since February. So, and I'm sure keeping in mind the inflation trajectory and the need to push growth, I'm sure RBI would take the right decision.
Okay. And, you know, now looking at the markets today, so they bounced back after four straight sessions of losses. From an investor's point of view, investors usually have this mindset of buying when the markets are low. But from the perspective of investing for the long term, is that really of consequence?
Niharika, I would not agree with you completely. I would say investors usually tend to buy when the markets are really doing well. You know, if there is positivity all around and people tend to go overboard when they see markets going up. And usually I don't see investors investing when markets are actually low. So, but yes, I would agree. I would say the best time to invest is when markets are low. But yes, you as it goes across the board, that we, all of us, we cannot time the market. Yes, if you are a long-term investor, obviously, I think India growth story is intact. Our macroeconomic fundamentals, whether we look at our growth projections, we look at inflation, and especially the policies of the government. The central government continues to push capital expenditure. We are continuing to push reforms in terms of ease of doing business. So I think all in all, and especially if you look at the budget, the last budget, we had given a big income tax relief to the people. And that was an attempt to push demand. And now we are already hearing government is doing extensive consultation with the states, with all the stakeholders in terms of rationalizing GST rates. So one of the slabs, probably the 12% slab, there is an attempt to bring down products in that range to 5% and little bit may move up to the next higher slab. So, and the basically the focus is to push demand. And also, if you look at the recent visit of the finance minister to the Northeast, and she made a remark, she called on the states to invest heavily in terms of capital expenditure, make huge capital expenditure. And there is a scheme in the budget where we allow these states to borrow from the central government to spend on states' capital expenditure in the state. So, and this is a very loan at a very low rate of interest. So, all in all, the attempt on part of the government is to push. So, as I was saying to your question, India growth story is intact. Yes, the impact that we are having on our markets or on Indian economy is more because of the external reason, the geopolitical reasons. Okay. And the immediate, obviously, one of the immediate worries for us or the issue which has been lingering for quite some time is the trade deal, which is we are trying to work around with US, which is our largest trading partner. But yes, if your goal is long term, I think India is the safest bet in the world. And currently, I think no market in the world is as safe as India.
I think the conditions are all favorable, and we'll take a look at the trade deals a little later. But first, it's time to talk about the Asian and European markets.
No, Asian se pehle kuch charcha hum share bazaar par hi karna chahenge. Siddharth ji, char bazaar utarta satr tha. Aur aaj uthti hui sawari leharon ki humne dekhi jahan khareedar laute hain. Bazaar ke is lautne ke piche mukhya karak kya raha? Antarrashtriya karak? या खुदरा मुद्रा स्फीति में बढ़त की दर, ये भारत की जो विकास गाथा है, मैक्रो फैक्टर्स हैं, वो वाकई बड़े अच्छे हैं, लेकिन चार सत्रों में हमने गिरावट देखा, तो उस गिरावट को हम क्या मुनाफा वसूली माने? पिछले चार सत्रों में जो ऊंचा स्तर था उस पर गिरावट हुई, और आज की तेजी के पीछे क्या मुख्य कारक?
नहीं मनोज,
और यहां से क्या संकेत लें हमारे?
जय, मैंने पहले भी जब मैं प्रोग्राम में आया हूँ मार्केट मंत्र में, तो मेरा एक मानना है अभी फिलहाल जो बाजार की चाल है, मुझे लगता है ये एक ब्रॉड रेंज में बाजार चलेगी इस समय. तो कुछ दिन हम देखेंगे कि मार्केट नीचे जा रही है, और जो आपने बोला कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे उस लेवल्स पे, तो वो एक रीजन हो सकता है. और आज बाजार में जो उत्साह था या जो रिबाउंड था चार दिन की गिरावट के बाद, एक इमीडिएट रीजन तो जो आपने कहा कि जो कल इन्फ्लेशन का डेटा है वो काफी पॉजिटिव है, और मतलब उस जो इस बात का संकेत है कि शायद जो आरबीआई ने भी इस साल के लिए जो मुद्रास्फीति का जो दर का एस्टिमेट किया है, शायद इन्फ्लेशन या महंगाई दर उससे भी नीचे रहे, तो वो किसी भी सेंट्रल बैंक या सरकार के लिए बहुत अच्छा संकेत होता है, और वो उनको एक स्पेस देता है कि और पॉलिसी मैनेवर करें, फिस्कल पॉलिसी में और स्पेस क्रिएट होती है. तो एक तो वो कारण रहा. दूसरा, मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत भी आ रहे हैं, हालांकि अमेरिका की तरफ से रोज एक मिक्स्ड बैग होता है, कहीं जो एक सिग्नल आ रहा है कि रशिया से अगर आप जो भी डील करेगा या ब्रिक्स नेशंस के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स हम लगाएंगे, तो लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक ये भी बात आ रही कहीं ना कहीं सामने कि वी मे बी एबल टू सील अ इंटरिम ट्रेड डील विद यूएस, और साइमल्टेनियसली एक जो हम एक बड़ी जो बायलैटरल ट्रेड डील की बातचीत जो अलग से भी हो रही है, तो शायद उसको भी हम अक्टूबर नवंबर तक उसको भी सील कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पॉजिटिविटी थी. और थोड़ा सा हाँ, एक चिंता का जो सबब लगता है बाजार में भी है, वो शायद जो अर्निंग्स आ रही हैं अभी
जी, जी, जी.
उसमें जो जिस तरह के कंपनियों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उतने उत्साहवर्धक नहीं है. लेकिन मुझे लगता है चूंकि यूजुअली अगर आप देखेंगे जो पहला तिमाही अप्रैल में जून, तो ये जनरली हम देखते हैं कि इकॉनमी जो स्लो पीरियड इसको माना जाता है, जो अक्टूबर से मार्च का जो पीरियड है उसको हम देखते हैं जब एक्टिविटी जो फेस्टिवल सीजन तो जो अब पिक कर रहा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा अभी शुरुआत है और मुझे लगता है पिक करेगा.
आइए अब चले वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार. अमरीका में कल हुई लिवाली का असर आज एशियाई शेयर बाजार पर बड़ा अच्छा दिखा. चीन को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख बाजार में लिवाली की गई. हांगकांग का हेंगसिंग सूचकांक 1.57% लाभ के साथ बंद हुआ. जापान के निक्केई 225 में 0.55% की वृद्धि हुई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.41% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.26% मुनाफे के साथ बंद हुए. उधर बिकवाली के दबाव में चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.42% की गिरावट हुई. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के कारोबार चल रहा था. अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 0.06% नीचे चल रहा था, जबकि जर्मनी के डेक्स में 0.11% के आसपास वृद्धि थी. उधर फ्रांस का कैक 40 भी 0.04% ऊपर चल रहा था.
As for the US markets, US stocks closed with modest gains on Monday as investors continued to keep a watch on President Donald Trump's latest tariff threats, but held steady ahead of earning reports and economic data due this week. The Dow Jones Industrial Index rose 0.20% to close at 44,460, while the S&P 500 inched up 0.14% and settled at 6,269. The tech-heavy Nasdaq Composite advanced 0.27% to 20,640. Trump announced over the weekend that the U.S. will levy 30% tariffs on the EU and Mexico from August 1st. Both the EU and Mexico have indicated they wanted to keep negotiating with the Trump administration. The U.S. president has also sent letters to more than 20 countries over the past week informing them of import tariffs from next month. And before we get on to unraveling this, let me also brief you on the next story. U.S. President Donald Trump has threatened to impose a secondary 100% tariff on buyers of Russian exports, including oil and gas, if Moscow does not agree to a deal to end the war with Ukraine within 50 days. He was speaking to reporters with NATO Secretary General Mark Rouet at the White House on Monday. New Delhi is racing to finalize a bilateral trade agreement with the US, and the threat, if implemented, means that any country, including India, that trades with Russia face the tariff if they want to sell their products to the US. Russia is one of the major suppliers of crude oil to India. New Delhi has defended the oil purchase because it is needed for the development of the country, as well as helping stabilize international oil prices. So lots going on this front, and this could also mean shuffling of foreign policies across the world. But when it comes to India, India has been very successful in maintaining a neutral stance given the recent geopolitical tensions. In fact, I think it's one of the reasons we were able to evacuate our citizens from war-prone areas. But how do you suggest India handle a tricky situation like this? It could go either ways, right?
See, Niharika, as I said, we are constantly engaged with US, and I think a lot will hinge on the trade deal that we are able to clinch with US. And I'm sure things should work out because US is our biggest trading partner, and as well as far as the threat that US has given in terms of imposing 100% tariffs on if Russia doesn't stop war with Ukraine in next 50 days. So that if, I think, is very important, and I'm sure something should work out, because I think this war has also been on for quite some time. It's almost so, I think, and there is fatigue on both the sides, and I'm sure Russia-Ukraine conflict, if we see an end to it, I'm sure this threat would also dilute with that. And simultaneously, the constant engagement between the two countries and the seriousness, because I think the reason that President Trump also pushed back the deadline for imposing the tariffs on countries if we don't meet that deadline of July 9, which was postponed to August 1, shows that US is equally serious about clinching a trade deal with India. So I'm sure we will reach a solution which would encompass all these issues and would lead to a solution.
So things are likely to work themselves out in the highest and the best way, if we can put it that ways, right?
आइए आगे बढ़ें, नजर डालें एक अच्छी खबर पर. देश में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल निर्यात 5.94% यानी लगभग 6% बढ़कर 210 अरब डॉलर पर पहुंच गया. अच्छी खासी वृद्धि कई और क्षेत्रों में हुई है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो निर्यात है वो 46.93% बढ़कर 4.15 अरब डॉलर पर जून 2025 में पहुंच गया, जबकि इसी अवधि में पिछले वर्ष 2.82 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी. इस दौरान देश का निर्यात यानी जून महीने में 3.71% घटा है, 53.92 अरब डॉलर पर दर्ज हुआ है. सकल निर्यात जून में सेवा क्षेत्रों का, वाणिज्य और सेवा क्षेत्रों का $67.98 करोड़ दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष जून में 63.83 करोड़ दर्ज हुआ था. इस दौरान व्यापार घाटा देश का 18.78 अरब 78 करोड़ डॉलर जून में रहा है. इन आंकड़ों के साथ कई और अच्छे आंकड़े हैं जिन पर हम प्रश्न के दौरान चर्चा करना चाहेंगे। पहले तो ये कि ये निर्यात में उल्लेखनीय सकल वृद्धि पहली तिमाही में 6% की क्या दर्शा रही, हमारे कुल निर्यात में जो दिशा हमारी जा रही है इस वित्तीय वर्ष के लिए।
नहीं मनोज जी, देखिए एक बात जो आपने बोला कि जो पहली तिमाही और खासकर जून का भी अगर आप ट्रेड डेटा देखेंगे, जो एक्सपोर्ट का जो नंबर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं हमने जो हमारा एक्सपोर्ट्स का लेवल है उसमें कोई गिरावट नहीं है। और ऐसे समय पे जबकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस दुनिया भर में है, पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि एक अस्थिरता का माहौल है दुनिया में, और एक्सपोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं, मतलब हम दुनिया को निर्यात करते हैं तो यूएस उसमें एक बहुत बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, यूरोप है, तो ऑर्डर्स भी, और ये सब ऑर्डर्स भी लिए, मतलब एक आप बुक करते हैं आज कम से कम 6 महीने 8 महीने के आगे की अवधि के लिए ऑर्डर्स, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उसके बाद से और जो लगातार दुनिया में जो अस्थिरता है उसका बहुत बड़ा असर हमारे एक्सपोर्ट्स पे नहीं है। वी हैव बीन एबल टू मेंटेन, वी हैव नॉट बीन हिट। तो जो
यदि श्रोताओं, ये एक अच्छी बात है कि जो कारोबारी जगत में वैश्विक उथल पथल का असर हर जगह दिख रहा, हर देश को कहीं ना कहीं उस आंच की जो टैरिफ को लेकर लगती दिख रही है उसमें हम बचे रह गए, ये कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। यहां हम ये समझना चाहेंगे कि इस वर्ष जो आयात रहा है जून महीने में वो पिछले वर्ष जून की तुलना में 3.71% घटा है और 53.92 अरब दर्ज हुआ, ये जून महीने का आंकड़ा है। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे कि आयात में गिरावट, इसे हम अच्छा संकेत माने या कहीं ना कहीं ये यानी हमें चिंता का विषय भी बन सकता है?
नहीं मनोज जी, अगर आप मोटे तौर पे देखें तो इंपोर्ट को एक हमेशा ये देखा जाता है कि आप किसी न किसी चीज के लिए डिपेंडेंट है, तो बहुत ज्यादा अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है
जी।
लेकिन कहीं ना एक बात एक सच ये भी है कि इतनी बड़ी दुनिया में ऐसा तो नहीं होगा कि आप हर चीज आपके यहाँ आपके देश में ही होती हो या आप उसको प्रोड्यूस करते हो या उसकी अवेलेबिलिटी हो, तो कुछ चीजों आप इंपोर्ट करते हैं। खासकर हमारा जो बहुत बड़ा इंपोर्ट का जो बिल है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट 70-80% जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा है गोल्ड, गोल्ड इंपोर्ट भी हम बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं दोनों चीजों को, चाहे वो पेट्रोलियम हो चाहे वो गोल्ड हो, तो और दूसरा जो आपने बात की घटने की, तो घटना
आयात घटना,
हाँ आयात घटना कई बार वो उसको आप पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं कि इंपोर्ट हमारा घट रहा है, लेकिन उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ये भी दिखता है कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा इंपोर्ट आपका गिर रहा है तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप इंपोर्ट करके आज हम पेट्रोलियम के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। अगर आज हम पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम आप देखेंगे कि यूरोप को आधा जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट है, जो पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल का, वो हम हिंदुस्तान से कर रहे हैं। फिर गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं जेंस ज्वेलरी के फॉर्म में, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट के, तो उसके दोनों मायने हैं। हल्का सा अगर इंपोर्ट डाउन है तो कहीं ना कहीं वो ये भी शो करता है कहीं ना कहीं डिमांड में भी स्लैक है हल्का सा।
श्रोताओं, एक अच्छी जानकारी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में इस दौरान जून में 46.93% की वृद्धि हुई। इसी तरह दवा और दवा से संबंधित सामग्रियां, उसके अलावा इंजीनियरिंग सामान, उसके अलावा मैरीन प्रोडक्ट, मांस, डेयरी उत्पाद और पोल्ट्री उत्पाद का निर्यात भी अपेक्षाकृत पहले इसी अवधि में पिछले तिमाही प्रथम तिमाही के तुलना में इस वर्ष बेहतर रहा है। यानी अच्छी खबरें निर्यात के मोर्चे पर हमें दिखी हैं।
एंड एज फॉर द नेक्स्ट स्टोरी दिस इवनिंग, यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी हैज रीअफर्म दैट इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, रादर इट इज अ नेशनल मिशन। Speaking at the IVCA Renewable Energy Summit 2025 at IIT Bombay today, he highlighted that private investment is vital to achieving India's ambitious target of 500 gigawatt non-fossil fuel capacity by 2030. The Union Minister announced that following the success of the PM Kusum Yojana in some states, and in response to requests from 20 state ministers, the central government will soon launch PM Kusum Yojana too.
PM Kusum, when it started, so no state showed any interest. But today, not less than 20 chief ministers have met me. They're all demanding, humko Kusum mein abhi allotment kar do. Means, samajhne mein thoda delay ho gaya state ko, lekin Modi ji 10 saal pehle hi samajh liye the, kya hai karke. To abhi sabhi state, Telangana se leke Jammu Kashmir tak, sabhi log aake mil rahe hain. हमको रिन्यूएबल एनर्जी में पीएम कुसुम में दे दो। तो पीएम कुसुम अभी 2026 में मार्च में अभी वो उसका जो टाइम था वो खत्म हो रहा है, लेकिन हम बहुत सीरियसली सोच रहे हैं पीएम कुसुम 2 हम शुरू करने का अभी सोच रहे हैं।
Joshi credited the growing interest of investors in renewable sectors like solar and wind for this next phase. India's clean energy sector is gaining unprecedented momentum. The country has achieved a major milestone, reaching 50% of its installed electricity capacity from non-fossil fuel sources, 5 years ahead of the 2030 target. Very quickly, so AI has been a central topic of discussion nowadays, and it requires huge compute power. So how challenging is it going to be to maintain our energy goals in the future, achieving them or maintaining the current goals that we have already achieved?
See, Niharika, if you go by our present track record, I think we are very much ahead of the schedule in terms of, as you rightly said, we are around 240 in terms of non-fossil fuels. And we aim to reach, we are already at 240 gigawatts. And our goal is to reach 500 gigawatts of non-fossil power generation by 2030, which looks very much achievable. Despite all the odds, as you said, the huge energy computation required for AI. But and at the same time, if you look the emphasis of the government, like in the year budget before this one, current 2023-24 budget, the PM Surya Ghar Yojana, I think installation of solar panels on rooftops of each houses. So I think that has been a big success, and government is still continues to focus, and we have a huge budgetary outlay for that. So what I feel is in terms of achieving our non-fossil power generation, I think we would be doing it before the 2030.
Very well. And with that, let's also quickly take a look at the crude oil prices. Crude oil prices witnessed mixed trading trend today. Brent crude was trading 0.01% higher at $69.22 per barrel, while WTI crude was down 0.09% at $66.92 per barrel when reports last came in.
Siddharth ji, ट्रंप साहब की नई जो कह लीजिए कि धमकी कह लें, चाबुक कह लें, ऐलान कह लें, रूस से तेल खरीद पर और तेल के अभी के दाम पर किस दिशा में जाता तेल का दाम दिख रहा आपको?
नहीं देखिए मनोज जी, चूंकि दुनिया में अभी अस्थिरता है और जहां तक तेल के भाव अभी जो दिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई अनटिल अनलेस कोई अनहोनी हो जाए, जैसे अभी बीच में इसराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला बोल दिया था, तो वो जो कुछ दिन थे जब हमने देखा था क्रूड ऑयल के प्राइसेस में स्पर्ट था, जो कि दुनिया में अभी अस्थिरता है, जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं, तो मुझे नहीं लगता, और एक जनरल डिमांड स्लो डाउन है, तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत बड़ा फेरबदल या बहुत बड़ा मूवमेंट, और ये हमको करंट प्राइसेस हमको सूट भी करते हैं,
यानी वर्तमान स्तर श्रोताओं तेल के लिए अच्छा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आपकी जेब के लिए भी ये सुखद होगा, और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.48% higher at 98,680 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading 1.47% up at 1,14,940 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज चलें तो वहां अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.03% घटकर 97,746 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी भी 0.46% अपनी चमक खोकर 1,12,414 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी। बहुत संक्षेप में, बहुत यानी एक दो पंक्ति में, सोना और चांदी के भाव किस दिशा में जाते अब दिख रहे हैं?
नहीं, फिलहाल तो जितनी अनसर्टेनिटी रहेगी, मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस और आपको चांदी में तेजी दिखेगी। चांदी में खासकर तेजी है क्योंकि अब वो गोल्ड को रिप्लेस भी कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सोना बहुत महंगा हो चुका है, प्लस सिल्वर का एक इंडस्ट्रियल जो यूजेज है उसकी वजह से भी इंडस्ट्री सिल्वर की डिमांड में हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रही है।
बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, Indian equities bounce back after sliding for four straight sessions. Sensex closes at 82,571. Nifty settles near 25,200. In international markets, most Asian indices today and US stocks overnight end with gains. And India's overall exports rise by nearly 6% in the first quarter of current financial year. Electronic goods exports increase almost 47% in June. And with that, it's a wrap on today's Market Mantra.
Market Update.